अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, माधुरी ने एक बार फिर धमकी दी, पर अन्वय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी बेरुफी देखकर माधुरी जी गुस्से से भड़क उठीं और मदन जी पर चिल्लाते हुए बोली, देख लीजिए अपने भाई को, मुंह फेर लिया इसने। इसका मतलब इसे मेरे जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लड़की यहीं रहेगी। आपका भाई आपके सामने एक अनजान लड़की के लिए आपकी पत्नी को घर से जाने को कह रहा है और आप खामोशी से सुन रहे हैं। कुछ नहीं कहेंगे आप उन्हें? या आपके लिए भी कुछ देर पहले इस घर में आई लड़की आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी हो गई है? या आपको अपने भाई से इतना प्यार है कि उसकी जिद पूरी करने के लिए आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है मधु, मदन जी ने सफाई देनी चाही, पर माधुरी जी ने उनकी बात बीच में काट दिया और गुस्से से बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने फैसला ले लिया है, या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। अब आप सोच लीजिए, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है, आपका भाई या आपकी पत्नी? मदन जी के पास अब रास्ता ही क्या बचा था। उन्होंने अन्वय को देखा, पर उनके कुछ कहने से पहले ही अन्वय बोल पड़ा, मेरा फैसला भी सुन लीजिए, वो लड़की मेरे भरोसे यहाँ आई है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अकेले दुनिया से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो उसके साथ साथ मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी आपकी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती, वो तो चाहती है कि मुझसे उनका पीछा छूट जाए। आपको उन्हीं को खुश करना है तो चला जाता हूँ मैं ये घर छोड़कर, उसके बाद भाभी को कभी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। मदन जी कुछ बोल ही नहीं पाए। एक तरफ उनका भाई था जिसे उन्होंने पाला था, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी जिसे अग्नि के साथ फेरे लेकर ब्याह करके इस घर में लाए थे। दोनों में से किसी एक को भी वे इस घर से जाने के लिए कैसे कह सकते थे? उनकी दुविधा समझते हुए अन्वय ने मुस्कुराकर कहा, आज पत्नी के प्यार के आगे भाई का प्यार हार गया। कोई बात नहीं, मैंने आज तक आपको बहुत परेशान किया है, अब नहीं करूंगा, आप रहिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ। वैसे भी मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है, तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर उसने उन्हें बड़ी आसानी से छुपा लिया। मदन जी की आंखों में भी आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अन्वय ने जैसे ही दरवाजा खोला, आन्या उसके ऊपर ही गिरने लगी, क्योंकि वो दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। अन्वय ने उसे गिरने से बचाया और एक नज़र घूरने के बाद अंदर चला आया। आन्या भी उसके पीछे पीछे आ गई और उसके पीछे खड़े होकर बोली, मेरे वजह से तुम्हारी तुम्हारे भैया भाभी से लड़ाई हो गई। सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। और कहाँ जाओगी तुम अकेली? अन्वय की घूरती निगाहें उस पर पड़ी तो आन्या ने सर झुकाकर कहा, कहीं तो चली ही जाऊंगी, तुमने मेरे लिए इतना किया वही बहुत है। मैं अपनी वजह से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे वजह से तुम्हें अपने घर और अपने परिवार से। आन्या ने इतना कहा ही था कि अन्वय ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, उसकी उंगली आन्या के लबों को छू रही थी। इसके साथ ही आन्या के शरीर में बिजली की तरंगें दौड़ गई थीं। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसे एकटक देखने लगी। कितना बोलती हो तुम, थकती नहीं हो? अन्वय ने खींचते हुए सवाल किया। आन्या ने बड़ी ही मासूमियत के साथ नामे सर हिला दिया। उसकी मासूमियत देखकर अन्वय का गुस्सा अपने आप ही कम हो गया। ये लड़की कोई जादू जानती थी, पल में उसके गुस्से को शांत कर देती थी। ये देखकर अन्वय को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया और आराम से आगे बोला, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुम नहीं भी होती तब भी आज नहीं तो कल ये होता, मुझे इस घर से जाना ही होता, भाभी ये बहुत पहले कर चुकी होती, बस उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा था। आज तुम्हारे आने से उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने अपना दाव चल दिया। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तुम्हें मैं यहाँ लाई था तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती और मैं किसी सेफ जगह तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं कर देता, तुम मेरे साथ रहोगी। अब शांति से जाकर बेड पर बैठो, मुझे मेरा सामान पैक करना है, और हाँ, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, याद रखना। आन्या ने हामी भर दी। अन्वय की गहरी काली आंखें उस पर टिकी हुई थी और वो उसके इतने करीब था कि आन्या सांस भी रोके खड़ी थी, मुंह से शब्द ही नहीं निकल सके। अन्वय ने उसे देखा तो उसके लबों से अपनी उंगली हगाते हुए कहा, सांस लो वरना मर जाओगी और यहाँ से मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी तुम्हारे खून के इल्जाम में। उसकी बात सुनकर आन्या ने झट से कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, बहुत सख्त जान है मेरी। उसकी बात सुनकर अन्वय ने वापस उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे घूर कर देखा तो आन्या ने उसकी बात याद करते हुए मुंह पर उंगली रख ली और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। अन्वय ने उसके ऊपर से नजरें हटा ली और अलमारी की तरफ बढ़ गया। आन्या के चेहरे को याद करते हुए उसके लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई। उसने बैग निकाला और अपना सामान पैक करने लगा। आन्या खामोशी से उसे देख रही थी। अन्वय ने अपना बैग पैक किया, फिर उसकी तरफ मुड़ा तो आन्या अब भी मुंह पर उंगली रखे अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी और बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। कोई इंसान इस मासूम और क्यूट सी लड़की से प्यार ना करे, ये कैसे हो सकता है? अन्वय के दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। आन्या ने अब उसे देखकर कहा, अब उंगली हटा लूं? पर बोलना कुछ नहीं है,
अन्वय ने सख्ती से बोलने के लिए मना कर दिया तो आन्या ने हाँ में सर हिला दिया और मुंह पर से उंगली हटाकर चैन की सांस ली, जैसे चुप रहने पर वो ढंग से सांस नहीं ले पा रही थी। अन्वय उसके पास आया और उसके बैग को भी लेकर गेट की तरफ बढ़ गया। आन्या उसके पीछे पीछे चल दी। अन्वय बाहर आया तो मदन जी अब भी वहीं खड़े थे। अन्वय ने जाकर दोनों बैग छोड़े और जाकर उनके पैर छू लिए। बड़े भाई के साथ साथ वे अन्वय के लिए उनके पिता की तरह थे। मदन जी ने भी उसे अपने बेटे की तरह रखा था। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रिश्ते में नहीं बांधना चाहता जो तुम्हारे दिल से न जुड़े। विश्वास है मुझे अपने भाई पर कि वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो फैसला लोगे उसे गलत साबित नहीं होने दोगे और जहाँ रहोगे खुश रहोगे। दोबारा यहाँ मत आना। बहुत ताने सुन लिए तुमने अपनी भाभी के। अब जाकर खुलकर अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। उनकी बातें सुनकर अन्वय की आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान ठहर गई। भाभी वहां नहीं थी। अन्वय अब बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे घर से बाहर निकल गया। आन्या उसके पीछे ही थी, पर गेट पर जाकर वो रुक गई और वापस अंदर चली गई तो अन्वय उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगा, पर कुछ कदम बाद ही उसके कदम रुक गए। उसके कानों में आन्या की आवाज पड़ी, मुझे नहीं पता आप अपने भाई को ऐसे जाने क्यों दे रहे हैं। आपकी नम आंखें बता रही हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे और उनके बीच कुछ है इसीलिए आप उन्हें घर से निकाल रहे हैं, तो मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती। हम कल स्टेशन पर मिले थे और वे बस मेरी मदद करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे।
मैंने उन्हें कहा भी कि मुझे जाने दो, मेरे लिए उन्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप ही मुझ पर विश्वास कर लीजिए, उन्हें घर से मत निकालिए। बस कुछ दिन दे दीजिए मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे वजह से ये घर बिखरे मैं ऐसा नहीं चाहती। आन्या मदन जी के सामने खड़ी होकर उन्हें समझा रही थी। अन्वय ने उसकी बात सुनी तो कड़क आवाज में बोला, आन्या बाहर आओ। उसकी तेज आवाज सुनकर आन्या डर गई। उसने घबराकर पीछे देखा तो अन्वय उसे ही घूर रहा था। मदन जी ने उसे देखा तो प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। आन्या ने सर घुमाकर उन्हें देखा तो मदन जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही है, वो बात बात पर गुस्सा करता है पर बुरा नहीं है। जानता हूँ तुम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं है, पर मैं अपने भाई को उससे भी ज्यादा जानता हूँ। तुम उसके लिए कोई आम लड़की नहीं हो, खास हो, तभी तुम्हारे लिए वो ये घर छोड़ने को तैयार हो गया। वैसे तो वो ये घर बहुत पहले छोड़ गया होता पर मेरे लिए रुका रहा, पर आज उसने इस घर को छोड़ने का फैसला लिया है। मतलब साफ है तुम उसके लिए खास हो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता वो, इसीलिए खुद भी साथ जा रहा है। तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, मैं हूँ, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है, फिर भी कुछ मांग रहा हूँ तुमसे, उसका ध्यान रखना। मूडी है, दिल की बात जल्दी से जाहिर नहीं करता, यहाँ से जा रहा है पर ये उसके लिए आसान नहीं है। तुम अच्छे घर की साफ दिल लड़की लगती हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना। अब जाओ वरना वो गुस्सा हो जाएगा। आन्या उनकी आधी बातें समझ तक नहीं सकी। इतने में अन्वय अंदर आ गया और उसकी कलाई पकड़ते हुए गुस्से में उसे अपने साथ ले गया। आन्या कभी उसे तो कभी मदन जी को देखती ही रह गई। अन्वय ने बाहर जाकर उसका हाथ छोड़ा और गुस्से में बोला, क्या कर रही थी वहाँ? मना किया था कुछ भी कहने के लिए? बिना बोले कुछ देर भी नहीं रह सकती तुम? उसके चिल्लाने से आसपास लोग जमा हो गए। आन्या ने सबको देखा और नज़लें झुका ली, पर उसकी आंखों में आई नमी अन्वय से छुप नहीं सकी। उसने दोनों बैग संभालते हुए कहा, चलो मेरे साथ। आन्या नज़रें झुकाए उसके साथ चल दी। आसपास लोग बातें करने लगे पर अन्वय ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ऑटो रोका और आन्या के साथ वहां से निकल गया। बस स्टैंड पहुंचे पर अन्वय सामान निकाल ही रहा था कि उनके सामने से बस जाने लगी। उनके आगे एक जोड़ा और था, वे भी बस के लिए भागे। अन्वय ने भी जल्दी से बैग्स पकड़े और बस के पीछे दौड़ गया। उसके लंबे लंबे पैर थे पर बेचारी आन्या उसके कदमों से बराबरी नहीं कर पा रही थी, वो पीछे छूट गई। वो कपल बस में चढ़ गया और अन्वय की आवाज़ पर उन्होंने बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा तो बस की रफ्तार धीमी हो गई। उस कपल ने अन्वय की बैग्स पकड़े तो अन्वय भी बस में चढ़ गया। अब उसने पीछे देखा तो आन्या थोड़ी दूर थी। एक तो बस के पीछे भागने की वजह से वो थक गया था। आन्या को इतने पीछे देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गईं। इतनी मुश्किल से बस में घुसा था पर उसे वापस उतरना पड़ा। वो भागता हुआ आन्या के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने साथ लेकर भाग गया। अंदर से कपल में जो लड़का था उसने हाथ दिया तो अन्वय ने आन्या को आगे कर दिया। आन्या तो चढ़ गई पर बस ने रफ्तार भी बढ़ा दी। अन्वय पीछे छूट गया तो आन्या घबराई हुई सी गेट से झाँक कर उसे देखने लगी। अन्वय अब भी बस के पीछे भाग रहा था और उसे अंदर जाने को कह रहा था पर आन्या सुन नहीं रही थी। उन्हें देखकर लड़की तुरंत ड्राइवर के पास भागी और अचानक ही ब्रेक लगा, बस रुक गई। झटका लगने से आन्या गिरते गिरते बची। लड़के ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। अन्वय भी भागता हुआ बस में चढ़ गया और बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। आन्या डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी। अन्वय भागते भागते थक गया था तो कमर पकड़े थोड़ा झुककर गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
उस लड़के ने बैग से बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अनवे ने थोड़ा सा पानी पिया और थैंक यू कहकर बोतल वापस उसे दे दी, तो लड़के ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, मानना पड़ेगा यार, कमाल का स्टैमिना है तुम्हारा। तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरी बस छूट गई होती, पर तुमने हार नहीं मानी। क्या भागे हो यार, तुम्हें तो एथलीट होना चाहिए, देश को एक दो गोल्ड तो यूं ही मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अरे भागना तो था ही, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो बस में थी उसे अकेला कैसे छोड़ देते। देखा नहीं कितनी परेशान थी बेचारी, अगर तुमने नहीं पकड़ा होता तो नीचे गिर गई होती। उनकी बात सुनकर अनवय की नजरें आनिया पर गईं, जिसकी आंखों में अब भी आंसू भरे हुए थे और नजरें उसी पर टिकी थीं। अनवय ने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या वाइफ है? पर आप दोनों को देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हो रखी है, लड़की ने फिर से सवाल किया। इस बार आनिया ने जवाब दिया, हम दोस्त हैं। उसका जवाब सुनकर अनवय ने हैरानी से उसे देखा, पर आनिया ने उसे नहीं देखा। चारों ने टिकट ली और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, साथ ही बात भी चालू थी। राहुल और सिमरन दोनों आनिया से बात कर रहे थे। आदत अनुसार अनवय एकदम खामोशी से बैठा हुआ था। करीब 4 घंटे बाद वे चारों औरंगाबाद बस स्टैंड पर उतरे। इस दौरान अनवय और आनिया को बात करने का मौका नहीं मिला था। टू कंटिन्यू।